प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आज सुनिए तखतपुर के SDM ज्योति पटेल का प्रेरक उद्बोधन।
सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति पटेल है। मैं ज्वाइंट कलेक्टर हूँ और अभी SDM तखतपुर के पद पर मैं हूँ और उस पर काम कर रही हूँ। जिला प्रशासन का यह बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे जो बोर्ड के बच्चे हैं उसे हमें संवाद करने का मौका मिल रहा है और इसमें आप सब लोग जुड़ रहे हैं। मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ, बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। देखिए क्या है कि जब किसी भी परीक्षा को हम देते हैं या फिर लाइफ में कोई भी नई चीज़ होती है तो हमको अजीब तरीके का स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस आपको इसलिए भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है और ऑलरेडी आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हैं, तो आप वो नई चीज़ को अपनाने में आपको थोड़ी सी एंजाइटी होती है। आज जब आप 12th के बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे, जैसे मुझे बताया गया कि लगभग 10th और 12th मिला के लगभग 45,000-50,000 हमारे बच्चे हैं। अब आप ये खुद सोचिए कि एक ज़िले में 45,000-50,000 बच्चे जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो अगर किसी भी तरीके के तनाव में हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। पहले हम ये समझते हैं कि तनाव होता क्यों। तनाव देखिए बहुत ही प्राकृतिक एक चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 12th में हूँ और मुझे तनाव हो रहा है और मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जो बिगड़ गया तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, तो मैं आप सब की गलतफहमी दूर कर देती हूँ। और मैं इसी स्टेज से गुजर चुकी हूँ। मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ। मैंने नवोदय से पढ़ाई की है। 6th से 12th तक मैं नवोदय में रही हूँ। यहाँ पर आपके मम्मी पापा नहीं होते, आपके दोस्त होते हैं, पर भगवान की दया से मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता था और मैं हमेशा ही बहुत अच्छा करती थी। बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होने के बावजूद भी कभी कभी रिज़ल्ट बिगड़ता था और उससे तनाव होता था। तो तनाव से निकलते कैसे थे? तनाव इसे होता था क्योंकि ये पता है कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत अच्छा लिख के भी आए हैं, पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। अब इसके पीछे की फिलॉसफी आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, लिख के बहुत अच्छा आया, पर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में उसी क्लास में पता नहीं कितने बच्चे हैं, पूरी इंडिया में कितने बच्चे हैं। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने एग्ज़ाम में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, आपकी कितनी तैयारी है, पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका बैचमेट ने कितनी तैयारी की, उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसी है, वो उस दिन कितना अच्छा लिख पाया। तो और ऐसे पता नहीं सैकड़ों बच्चे हैं जिनसे आपका कॉम्पिटिशन है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा लिखा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, पर आप दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में आप ये बस सोच रहे हैं कि मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला है, मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं कि आप एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर आपके कुछ टीचर्स हैं, आपको गाइड करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उनके कोर्स हैं जो एक निश्चित समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। चूँकि आप बोर्ड में हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कोई काम भी नहीं बताएंगे, आप वर्किंग भी नहीं है। ज़्यादातर अच्छे घरों के बच्चे तो वर्किंग होते नहीं हैं, इनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो काम तो एक ही है आपके पास पढ़ने का, आपने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दे दिया। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जिस स्टेज में आप हैं, अभी आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज अभी जो सिक्योर चार दीवारी में आप रहते हैं, कॉलेज की ज़िंदगी वैसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कुछ बदलने जा रहा है आपके साथ। तो आपके नए दोस्त बनेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे, आपके दिमाग अचानक से आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। 10वीं के बच्चे 11वीं 12वीं में ही सोचने लगते हैं, जैसे मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मेरा 10वीं का रिजल्ट आया मैंने 11वीं से ही पीएमटी की तैयारी शुरू कर दी, तो मुझे नहीं पता कि मैंने अपना 11वीं यानी पढ़ने के अलावा कुछ काम किया है। फिर भी मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन किस में हुआ, बीडीएस में। मैंने उसको किया, बीडीएस करते करते मुझे लगा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे बीडीएस नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मेरे पेरेंट्स को लगा नहीं नहीं हम तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये मैं बनना नहीं चाहती। फिर भी मैंने उस पढ़ाई को अच्छे से की, पर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी। मैं दिल्ली गई, दिल्ली में मैंने 2.5 साल तक यूपीएससी कोचिंग की, उसी एग्जाम उसी तैयारी में मेरा छत्तीसगढ़ पीएससी में हो गया। अब ये बताने के पीछे कारण ये है कि आप ये देखिए कि मैं खुद बता रही हूँ कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर फिर भी मेरा रिजल्ट स्कूल में भी कभी कभी बिगड़ जाता था। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँगी तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाती थी, हाँ सेकेंड आ जाती थी, थर्ड आ जाती थी। उसके बाद भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो जो मैं होती थी तो मैं बिल्कुल एकदम कंबल ओढ़ के सो गई और मैंने दूसरे दिन पढ़ाई नहीं की। बहुत गहरे से गहरे तनाव में भी मैंने पढ़ाई की है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के पास तनाव है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो। भगवान ने दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जिसको जीवन में तनाव ना हो, चाहे वो तनाव किसी भी स्तर का हो। तो जो आपको यहाँ पे लग रहा है कि मेरा तनाव सबसे बड़ा है और इससे बड़ा तनाव किसी के पास नहीं हो सकता, तो कृपया करके इस गलती को, गलतफहमी को दूर करिए। इस अभी जो आपकी लाइफ इसके बाद शुरू होने वाली है वो इससे भी कठिन होने वाली है। और ये लाइफ ऐसी भी है, कॉलेज की लाइफ, जिसमें आपकी खूब मौज मस्ती होगी, लेकिन आपके ऊपर अंदर अंदर से दबाव होगा, अरे यार मेरा कैरियर है, अब मुझे कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, प्रेस में जाना है, जिस भी तरीके से। तो आपके नए दोस्त मिलेंगे, कई के रिलेशनशिप भी बनेंगे, उसमें ब्रेकअप्स भी होंगे। तो आप ये बताइए, जब आप एक 12th बोर्ड का रिजल्ट जो अच्छा होगा बुरा होगा वो अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, तो जब आप एक नई दुनिया में जाएंगे, कॉलेज की स्कूल की चार दीवारी से निकल के, जहाँ पे इतने सारे नए लोग आपको मिलेंगे, आपके कैरियर का प्रेशर होगा, इतने सारे लोगों से डील करना होगा, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, तो जब आप 12th का रिजल्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करेंगे। हर बच्चे को ये सीखना चाहिए और हर पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि लाइफ में एक ही चीज़ नहीं होती। कि जैसे अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में सब कुछ मेरा जॉब है, आप 12th में पढ़ते हैं तो सब कुछ आपका जॉब है, ये 12th का रिजल्ट है, ऐसा कहाँ होता है। अगर मैं अपना सारा 24 घंटा सिर्फ जॉब को दूँ, जो कभी कभी देना भी पड़ता है, और अपनी फैमिली को ना दूँ, तो क्या मेरी लाइफ कंप्लीट है। लाइफ कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें पढ़ाई एक हिस्सा है, जो चूँकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैक्सिमम हिस्सा वही है। फिर आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपके बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम हैं, आपकी अपनी हॉबी है, इन सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करके रात दिन सिर्फ पढ़ते रहते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ भी गया तो इसके बाद आपको, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे मान लीजिए 12th में किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, वो फर्स्ट आ गया, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके उसका कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, उसको लोगों से बात करना नहीं आता, तो वो कॉलेज जाएगा, मान लीजिए कुछ अच्छा बन गया, बन भी गया कॉलेज में आने के बाद, पर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अब आप एक ऑफिस में जाते हैं या आप बिजनेसमैन बनते हैं, तो क्या आप इतने सारे लोगों से रोज मिलते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन होता है किसी भी प्रोफेशन में, क्या आप वो अच्छे से कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो जो आज आपको तनाव हो रहा है ना, वो कई गुना उस वक्त होगा। तो इस तनाव को मैनेज करने के लिए आपको अभी से रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्पस सिर्फ 12th पास करना नहीं है, आपका पर्पस सिर्फ एक कैरियर को पकड़ना नहीं है। ये मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ, ये बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ। हमारे पेरेंट्स जो इसमें कई लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, जैसे असल में दिक्कत ये होती है आजकल के टाइम में कि बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, 24 घंटा पढ़ते रहते हैं, और उनका अपनी फैमिली के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उनको एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें वो पढ़ते रहेंगे, खा पी के वहीं सो जाएंगे। चलो ये भी ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, बुरा गया, जो भी गया, अब जो गैप मिलता है ना हमको रिजल्ट आने के पहले का और एग्जाम खत्म होने के बाद का उस वो बहुत कंस्ट्रक्टिव टाइम हो सकता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तनाव के बारे में, ये तनाव अपने आप आपका कम हो जाता अगर पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दें। आपके बच्चे फ्री हो गए, आप उनके नानी नाना के घर ले जाइए, जो पहले हम लोग जाते थे। जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी हम नाना नानी के घर चले जाते थे, गांव जाते थे, आम की कैरिया बीनते थे, तालाब में नहाने जाते थे, मामा मामी के साथ गप्पे हाँकते थे, हाट बाजार घूमने जाते थे, अपने आप बंदा रिफ्रेश हो जाता था। आजकल क्या होता है, बच्चे का एग्जाम खत्म हो गया, बच्चे अपने में मस्त है, मोबाइल देख रहा है, दोस्तों से फ़ोन पर बातें कर रहा है, मम्मी पापा जॉब में चले गए या मम्मी घर पर है तो वो अपना काम करके फिर टीवी देख रही हैं, आराम कर रही हैं। अगर आप अपने ही बच्चे से बात नहीं करेंगे तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा आपको। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये तनाव का है ना, ये इसलिए भी है क्योंकि मम्मी पापा बच्चों से बात ही नहीं करते। और शुरू में तो ऐसा होता है जब कई पेरेंट्स, जैसे मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स को बोला जाए तो वो बात करने का जब प्रयास करते हैं तो बच्चे ही नहीं इंटरेक्ट करते। तो कई बार पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें डालना चाहिए, विलिंगली डालना चाहिए, डिटरमाइंड तरीके से डालना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे क्यों नहीं खुल के बात करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये जो टाइम आपको मिला है ना, ये शायद कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जॉब करने के लिए बाहर चले जाएंगे। ये जो 10-15 दिन 20 दिन आपको मिलता है ना, इसमें आपको वो सारी बातें करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ जो हम पता नहीं है 2-3 साल में, जब से बच्चे हमारी इतनी बोर्ड्स के एग्जाम में बिजी हो गए हैं और हम कर नहीं पा रहे, तो इसका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है ये 15-20 दिनों का। लेकिन किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है, सारे लोग सिर्फ मोबाइल में बिजी हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कृपया अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ खाना खाएं। जैसे पहले हमारी पॉलिसी होती थी कि घर की मेज पे सब लोग एक साथ खाना खाएंगे तो बहुत सारी बातें वहाँ पे हो जाती थी, लोग टहलने जाते थे साथ में मॉर्निंग वॉक में अपने बच्चों के साथ। आजकल कुछ नहीं होता, तो जब मम्मी पापा स्वयं में खुद से ही अपने आप में बिजी हैं तो वो बच्चा किससे बात करेगा। फिर इधर उधर से बातें आती हैं कि भाई बच्चा तनाव में था, ये कर लिया। मम्मी पापा को कैसे पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा तनाव में है, और माँ बाप से बेहतर कौन बता सक, किसको पता चलेगा, मतलब बच्चा बोले या ना बोले। आप अगर आप माँ बाप हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 12th पास कराना है, या 12th में या बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, पॉलिटिशियन, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ यही सब बनाना है? आप बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं कि इसके अलावा भी जिंदगी है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फिलॉसफी की बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हम इतनी आपाधापी में जी रहे हैं, कोई नहीं बताता भारत का जीवन दर्शन। भारत में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, किसी ने बताया है कि वो, आपको क्या लगता है कि कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़ के, अपनी ऐसो आराम छोड़ के संत क्यों बन गया? उसके पीछे जरूर कुछ होता होगा, कुछ तो मिलता होगा उस संत को जो अकेला बैठ के जंगल में बैठा है, कुछ तो ऐसा होता होगा ना उसके पास, जिसके सैकड़ों लोग उसको जंगल में मिलने जाते हैं, उसके पैर पड़ने के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसको घर बुलाते हैं, फिर भी वो बंदा नहीं आता, वो महान संत है। ऐसा क्यों होता है? शायद यहाँ पे जो पेरेंट्स जुड़े होंगे ना उनको पता होगा, क्योंकि उसके पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। हम जो रेगुलर लोग हैं ना, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो उस आदमी के पास है, और वही हम उससे लेने जाते हैं बार बार। हमारी बैटरी जो ऑफ हो जाती है ना, हम ऐसे महान लोगों के पास जाते हैं क्योंकि हमको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी होती है। मेडिटेशन क्यों किया जाता है? इसलिए ही किया जाता है, वरना वो पर सॉरी मैं ये बोलती हूँ, पर फिर भी मैं सभी टीचर्स को भी बोलती हूँ, अपने आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो, आप किसी भी क्लास के टीचर हो, बच्चों को बताइए कि जिंदगी में एक ही चीज पे अटक के नहीं रहना है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है। और ये तो छोटा सा तनाव है, हर एक मोड़ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप जूझते रह जाएंगे। तो अगर आपने बच्चों को अभी उससे फाइट करना नहीं सिखाया तो आपका ना आप अच्छे टीचर हैं ना आप अच्छे पेरेंट्स हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने नवोदय विद्यालय बसदेई से पढ़ाई की है, 6वीं से लेकर 12वीं तक। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मैं जो करना चाहती थी मैंने किया है, ठीक है। जब मैं नवोदय गई तो मुझे इतने बेहतरीन टीचर मिले, मैं आज भी बोलती हूँ कि मेरा स्कूल जो था वो मेरा गोल्डन टाइम था। मतलब मैंने छठवीं की क्लास में, जब मैं छठवीं में पढ़ती थी, तब मेरे सोशल साइंस के टीचर थे राजेश सर, उनको मैंने जगजीत सिंह की गज़ल गाते सुना था। उसमें वो पहली गज़ल थी मेरी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, ये गज़ल आप लोग सुनिएगा क्यों, किस तरीके, मतलब कुछ तो मतलब होगा जो ये वो ये बोल रहा है शायर, ये बोल रहा है कि ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। क्यों देगा भाई कोई ये दौलत और ये शोहरत जिसके पीछे हम लोग लगे पड़े हैं? क्योंकि जीवन दर्शन आपको मालूम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि, और ना पेरेंट्स को कोई चिंता है कि हम उनको बताएं जीवन एक रहस्य है और इसको समझना पड़ता है, इसमें एडजस्ट होना पड़ता है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सफल हुआ। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति निकाल लीजिए, आदिकाल से लेकर आज तक, गरीब से लेकर गरीब तक, खूबसूरत से लेकर खूबसूरत तक, अमीर से लेकर अमीर तक, मतलब महान संत निकाल लीजिए, महान पॉलिटिशियन निकाल लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स निकाल लीजिए, बिजनेसमैन निकाल लीजिए, आप उस व्यक्ति को उठाइए, उसको पढ़िए, चार पन्ने पढ़िए, कहीं ना कहीं उसके जिंदगी में आपको मिल जाएगा कि वो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे असफल हुआ। पता नहीं कितने दिन तनाव में रहा है, कोई 4 दिन रहता है, कोई 40 दिन रहता है, लेकिन वो निकला है उससे, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। मैं MBBS करना चाहती थी, BDS मिल गया, किया मैंने BDS, बहुत दुखी थी मैं कुछ दिन तक, 6 महीने तक बहुत दुखी थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कहाँ फंस गई मैं, मेरे को तो MBBS करना था, सर्जन बनना था, पर लाइफ के लिए मैं, लाइफ का शायद कुछ और ही प्लान था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरे पापा को लगता था कि मैं तो PMT में टॉप कर दूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पढ़ाई तो मैंने की थी ना। आप तो नहीं बोल सकते कि आपने तो पढ़ाई नहीं की, इसलिए ठीक है, मैंने मेरी जितनी क्षमता थी मैंने उतनी पढ़ाई की, पर मेरे साथ जो हजारों बच्चे PMT का पेपर दे रहे हैं, क्या मैं उनकी पढ़ाई डिसाइड कर सकती हूँ? क्या मुझे पता है कि वो अपने घर में कितना पढ़ रहे हैं? क्या मुझे पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग कितना अच्छा है, उनका रीजनिंग कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा मुझसे लिखते हैं? ये बताने के पीछे कारण है ये है कि आप बोलते हुए सुनते होंगे कि जीवन में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, और ये बिल्कुल सही बात है। ये पेरेंट्स कृपया अपने बच्चों को बताइए कि जीवन में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में बस ये होता है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं आप उसमें अपना बेस्ट करें और बाकी ऊपर ईश्वर पे छोड़ दें। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कुछ अपना अनुभव जीवन को, जीवन के बारे में जो आपका रहा है, आपसे जुड़े लोगों का रहा है, वो अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो जीवन को एक बृहत रूप में देख सकें, सिर्फ 12th के एग्ज़ाम के रूप में ना देख सकें, सिर्फ ना देखें, क्योंकि आपको उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सिर्फ 12th के बोर्ड में कितना नंबर आया ये एक पर्पस हमारा नहीं होना चाहिए, जो आजकल ज़्यादा लोगों का पर्पस है। हमारा बच्चा कैसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व का हिस्सा बने, जो कि एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना। आप ये बोले कि मैं 100% बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व का आदमी हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ में लर्निंग चलती रहती है, आपको कंटिन्यू सुधार करना पड़ता रहता है। तो आपका सोल पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे जिंदगी में कितना भी उतार चढ़ाव हो, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। तभी एक आप एक ताकतवर पर्सनैलिटी हैं। कौन होता है ताकतवर पर्सनैलिटी? जो बड़ा पॉलिटिशियन होता है, जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, नहीं। ताकतवर व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर में ताकत होती है, जो ये जानता है कि मैं दूसरा व्यक्ति मुझे अगर प्रभावित भी कर रहा है ना गलत तरीके से, तो वो 5 ही मिनट के लिए कर सकता है, या 1 दिन के लिए कर सकता है, 2 दिन के लिए कर सकता है। मेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं उस नेगेटिविटी को दूर कर सकूं। अगर आपका रिलेटिव को ये बोलता है अरे तुम्हारे तो नंबर कहाँ आए, और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और आप सुसाइड जैसा कोई प्लान बना लेते हैं, या अपने आपको कमरे में बंद कर लेते हैं, रजाई ओढ़ के रोते रहते हैं, तो आप कमजोर व्यक्तित्व के मालिक हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी 12th का बच्चा जो अब कॉलेज जाने वाला है, किसी कैरियर को परस्यू करने वाला, वो ये सुनना चाहता है कि वो अब वो एक कमजोर व्यक्तित्व का मालिक है। कोई क्यों कहे कि आप एकदम वीक पर्सनैलिटी हैं? क्या आपके स्कूल में सिर्फ आपको किताबें पढ़ना सिखाया गया? नहीं, सभी के टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनसे हमारा विशेष लगाव होता है, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने उनसे सीखा है अपने टीचर से कि महिला होने के बावजूद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि वो एक मेल टीचर थे। बहुत सपोर्ट, वो उन्होंने मुझे कहा भी था कि तुम्हारे जैसी लड़कियां ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। तुम मुझे पता है कि तुम जिंदगी में बहुत अच्छा करोगी, मेरी डायरी में उन्होंने लिखा था। अब पता नहीं मैंने जिंदगी में कितना अच्छा किया और नहीं किया, पर उनकी ये बात मुझे अभी तक याद है। और जब मैं निराश होती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश होती हूँ। आपने अगर बहुत से लोग ओशो को जानते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे यहाँ पे जुड़े होंगे, वो अगर ओशो को सुनते हैं तो ओशो जी ये बोलते हैं कि जब आप सुख को महसूस करते हो ना, तो बिल्कुल सुख को महसूस कर लो, मतलब नाचने का मन करता है ना, एकदम नाच लो कमरा बंद करके। आपके पैर एक वक्त के बाद दुखने लगेंगे, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, आपका डांस हो जाएगा। कुछ खाने का मन करता है ना, एकदम ललक हो रही खा लो, कई दिन तक उसके बाद खाने का वो चीज़ मन नहीं करेगा। वैसा ही दुख होता है, वैसा ही तनाव हो रहा है ना, दुख एक दिन दो दिन हो जाओ दुखी, महसूस कर लो उस दुख को, उसके बाद चला जाना चाहिए वो दुख। अगर वो दुख नहीं जा रहा या टाइम के साथ धीरे धीरे नहीं जा रहा, तो देर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट। और यहीं पे रोल होता है हमारे टीचर्स का और बच्चों का। बच्चों का चेहरा देख के समझिए कि वो क्यों इतने तनाव में हैं, और क्या एज ए पेरेंट्स सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कैरियर सेट करने की है, क्या उनके व्यक्तित्व में और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। और मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ कि लाइफ में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होना होगा, ये जीवन का कड़वा सच है। आप सिर्फ कृष्ण जी बोलते हैं ना, जिसके मतलब इंडिया में हर कोई इसका मतलब अलग अलग निकालता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, पता नहीं इसका क्या मतलब है। मैंने इतने लोगों को सुना है, पता नहीं हर कोई अलग अलग चीज़ें बोलता है, पर आप इसका बेसिक कोटि पकड़ लेंगे ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कृष्ण जी बोल तो एक किसी संत को मैंने बोलते हुए सुना था कि इसका मतलब ये होता है कि जब आप जीवन में सही कर्म करते हैं ना, वो काम करते हैं जो आपको करना चाहिए। जैसे 12th के बच्चे हैं, उनको पता है कि मेरा काम पढ़ना है और मैंने पढ़ाई कर ली, तो उनका सही कर्म हो गया। तो जब आप सही कर्म करते हैं ना, तो जीवन आपका सही दिशा में चलता है। तो आप इसलिए आपको जब सब कुछ सही चलने ही वाला है, तो फल की चिंता क्यों करनी है। तो कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कर्म सही करो, अगर कर्म गलत करोगे तो फल की चिंता तो करनी पड़ेगी। तो ये आपको शायद इसका यही मतलब है। और फल क्या होता है, यहाँ पे फल का क्या मतलब होता है कि तुरंत कोई कर्म करे और तुरंत फल मिल गया, नहीं ऐसा भी नहीं होता। आप कोई कर्म करेंगे, फल अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर आपको दिखेगा। तो बिल्कुल क्विक कुछ नहीं होता। आजकल की आपाधापी की जिंदगी में हम लोगों को आदत है सब कुछ की, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें एकदम तुरंत चाहिए होती हैं, पर तुरंत कुछ नहीं होता, कई बार हो भी जाएगा, मैक्सिमम टाइप में कुछ नहीं होता। और जिन लोगों को आप सफल मानते हैं ना, आप उनको उनकी जीवनी पलट के देखिए, उनका मैक्सिमम हिस्सा जो जीवन का है ना, वो सफलता में गुजरा है। ऐसा आपको लगे कि यार ये बंदा तो हमेशा सफल होता गया है, ये तो बड़ा लकी है, इसकी तो मेहनत इसको लग जाती है, ऐसा कोई नहीं है। आप 85 साल के आदमी को उठा लीजिए, आप 50 साल के आदमी को उठा लीजिए, जीवन का जो मैक्सिमम समय है ना, वो असफलता के उस दौर से गुजरा है। बस उस बंदे को आता था कि वो उसमें से कैसे निकलेगा, और उसको भी उतना ही रोना आता था, उसको भी उतना ही गुस्सा आता था, बस उसको निकलना आता था। अब मुझे तो, मैं तो UPSC करने गई थी, मैंने PSC दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने आके ज्वाइन कर लिया, तो आपके हिसाब से तो मैं दूसरी बार फेल हो गई ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको, सबको जीवन में, जितने भी आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, हम सबकी जिंदगी में ये हुआ है। तो जीवन को एक ब्रीफ, मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बात करिए अपने बच्चों से, जीवन को बृहद रूप में देखिए, जीवन के अनुभव बताइए। ऐसे रिश्तेदारों से मत मिलाइए जो आपके बच्चों को नेगेटिव देते हैं। और मैं जो अपने अनुभव से, मतलब मैं हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही हूँ, तो मैंने जो अभी जिंदगी में सीखा है एक नई चीज़, वो आपको बताती हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप अप्लाई करिएगा। देखिए, आप लाइफ में कई लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, कोई आपको अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तो बुरे अच्छा बोलता है तो बढ़िया है, बुरा बोलता है तो आपको ये पता होना, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ, मतलब आज की भाषा में चमड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अगर हर किसी के बोलने से आप प्रभावित होने लगेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी जिंदगी है। कोई किसी के 70 साल है, किसी के 75 साल है, कोई 80 साल जीने वाला है। पता नहीं यार आप लोग कितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे। और इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ है, और जिस टाइप की इनसेंसिटिविटी अभी वर्ल्ड में बढ़ी है, आपके आसपास बढ़ी है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ बहुत रोजी होने वाला है? लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप हर किसी के बातों से प्रभावित होने लगोगे, मतलब आपकी तो आधी लाइफ दुख में गुजर जाने वाली है। तो बिल्कुल इसको गांठ बांध लो कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो आर्ट ऑफ इग्नोरेंस है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। जीवन का समय बहुत सीमित है, आपको अपना गोल अचीव करना है। उस गोल अचीव करने में फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम बिताना है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी देखना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका मेंटल सपोर्ट है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को इग्नोर करिए। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, इग्नोर करना, इग्नोर करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना भाव देना है। आम भाषा में हर किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सच में खुश होते हैं और सच में आपकी भागी उसमें आपको किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला ना फल अलग अलग, कर्म करो फल अलग अलग तरीके से आता है। पता नहीं कब कौन सा फल आएगा, किस रूप में आएगा, आपका काम है बस अपने कर्म को सही तरीके से करना। तो लर्न टू वेट, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे धैर्य रखो, सब कुछ जिंदगी में एक दिन ठीक हो जाता है। जिंदगी में सब कुछ सही बोलते हैं, और ये मैं बहुत ज़्यादा तनाव लेने के बाद आपको बता रही हूँ। हमारे पेरेंट्स और बड़े बूढ़े जो बोलते हैं ना, जिंदगी में एक दिन सब सही हो जाता है, तुम स्पेशल नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। कई बार पेरेंट्स ऐसा रूडली बोल देते हैं ना, तुम स्पेशल नहीं हो कि तुम्हारे साथ ही हुआ, सबके साथ ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं। तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। आपको उस वक्त सुन के बुरा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबको उससे डील करना पड़ता है। और अगर आप एक 12th बोर्ड के रिजल्ट से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से मदद लीजिए, आपका जो दोस्त आपको अच्छा लगता है उससे मदद लीजिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए जो आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी नेगेटिव व्यक्ति को अपने जीवन में रखते हैं, तो मतलब आप अपनी लाइफ की खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं समझते। ये जिंदगी इतनी लंबी है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना जो लंबे टाइम तक आपका सपोर्ट सिस्टम बना के रखें। तो क्या सीखा हमने, कि किन चीज़ों को पकड़ के रखना है और किन चीज़ों को हमको छोड़ना है, इग्नोर करना है। कृपया पेरेंट्स ये बच्चों को सिखाएं कि किन चीज़ों को हमको इग्नोर करना है। ये हम लोगों ने नहीं सीखा था, ये अभी सीख रहे हैं जॉब में आने के बाद, क्योंकि हर दिन इतना पब्लिक इंटरेक्शन होता है, हर दिन इतने सारे तनाव से झेलते हैं। अगर ऐसे ही तनाव लेके बैठे रहेंगे तो जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। तो अंत में ये सीखना पड़ा आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोर होना, इग्नोर करना सीखिए, वेट करना सीखिए। लाइफ अपने आप में बहुत रहस्यमयी है, इसमें जीवन में आपका काम अपना काम करके छोड़ देना है और चीज़ें अपने तरीके से घटित होती हैं। तो लर्न टू वेट, वेट करना सीखिए। अगर 12th के बोर्ड के रिजल्ट अच्छे नहीं भी आए, तो हो सकता है ज़िंदगी में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। जैसे हमारे कलेक्टर साहब बोलते हैं ना कि मैं 12th में बोर्ड में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, पर आज देखिए वो आपका सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके कलेक्टर हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, कि एक बार की असफलता को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। फिर बच्चों से मैंने ये बोल ही रही हूँ, पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ कि आपके बच्चे का आकलन 12th के बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर मत करिए। बताइए उनको कि इससे कैसे उबरा जाता है। जब आप जीवन में असफल हुए थे तो आप कैसे उबरे थे? अगर आप भी कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते तो वो यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते। पर कितने सारे पेरेंट्स होंगे, कितनी असफलता देखी होगी। आज तो हमारे पास गाड़ी घोड़ा, नेट, इंटरनेट, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल सब है। तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे ज़्यादा संघर्ष देखा है, पर वो आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने हमारी एजुकेशन, हमको अच्छी एजुकेशन दी है, तब तो हम यहाँ बैठे हैं। तो कृपया करके बच्चों को समय दीजिए। पेरेंट्स को मैं बार बार बोलती हूँ, बच्चों से बात करिए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखिए, डेली सोप को थोड़ा साइड में रखिए। आपकी ज़िंदगी में आपको भी पता है कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर मन में रखने से कुछ नहीं होगा, आपको जताना पड़ेगा। अभी 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट आने वाले हैं, आपके बच्चों को आप सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। उनकी खुशी मनाने के लिए भी वो आपके पास ही आएंगे, अपना दुख बांटने के लिए भी आपके पास ही आएंगे, तो कृपया अवेलेबल रहें। फिर जो मैं हमेशा मैंने महसूस किया वो मैं बोलती हूँ कि असली मोटिवेशन जो होता है ना वो आदमी के अंदर से आता है, और जो मोटिवेशन अंदर से आता है ना वो बहुत लाइफ लॉन्ग होता है, और वो फिर तनाव वनाव दो चार दिन टिकता है या तनाव चलता रहता है, व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में लगा रहता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तनाव से, यह मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ। तो अपना व्यक्तित्व मजबूत करिए, और हमारे टीचर्स को भी बच्चों के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान पे हमको ध्यान नहीं देना। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को समय दीजिए, बहुत सारा तनाव आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, कर दूंगी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।